ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। ईरान और इसराइल में एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के कारण संघर्ष जारी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने के बाद एक वक्तव्य में कहा कि इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस बीच ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि उसकी सेना परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हमलों के जवाब का समय, प्रकृति और मात्रा का निर्धारण कर रही है। इससे पहले फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हवाई हमले की प्रतिक्रिया में ईरान की संसद ने एक मत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हॉर्मुज विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण तेल और गैस के लिए नौवहन मार्ग है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर गतिरोध जारी रहता है तो तेल की कीमत प्रति बैरल $100 के ऊपर जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए विश्व के कुल तरल प्राकृतिक गैस तथा वैश्विक तेल निर्यातों का लगभग 20% कारोबार होता है। इस बीच अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने अत्यधिक चौकसी बरतते हुए इस क्षेत्र में सैन्य बलों को तैनात किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची आज रूस पहुंच चुके हैं। वे अमरीकी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति की अपील की।
We face a stark choice. One path leads to wider war, deeper human suffering and serious damage to the international order. The other leads to de-escalation, diplomacy and dialogue. We know which path is right. And I urge this Council and all Member States to act with reason, restraint and urgency. We cannot and must not give up on peace.
उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का संकेत दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की वर्तमान सत्ता ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग ने ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप के हमलों का समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने तनाव कम करने और कूटनीति का रास्ता अपनाने का भी आह्वान किया। चार राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना के नतीजे मिलने लगे हैं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने निलांबूर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार आरिदान शौकत ने 77,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने लुधियाना विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु से 10,637 मतों से जीत दर्ज की। गुजरात में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की है, जबकि कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार चावड़ा ने विजय हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित संकलन विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान खंड 2 का विमोचन कर रहे हैं। राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। श्री नड्डा ने कहा कि देशभर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान सदैव याद किया जाएगा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था।
हेडिंग्ले में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 103 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन के खेल के अंत तक भारत ने 2 विकेट पर 90 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।